جانا ہے، ان کو یہ کرنا ہی پڑے گا، سمجھ نہیں سکتا. سنتپت مانس شانت ہوں جن کے گنوں کے میں وے بل ہمان گئے. تب تو پرجاپن مہادھکار آرمبھ کرنا ہے، اس کے بارے میں سمے سمے پر بیچ بیچ میں اپن بتاتے رہے اس کی مہیما کو، اور انتم گاتھا میں تو اسپشٹ ہی کہہ دیا تھا کہ ایک دفعہ وہ آتم گیان ہو گیا ہے، سمنا درشن ہو گیا ہے، وہ دوارا اسخلت نہ ہو جائے، اس کے لیے گے تت پرجاپن ادھیکار لکھنا بہت ضروری ہے، سمجھانا بہت ضروری ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آتما کے انبھو ہونے کے لیے جتنا جاننا آوشک ہے وہ تو سب گیان تتو پرجاپن میں ہی ان نے سمجھا دیا ہے. جو باتیں یہاں سمجھائی جائیں گی وہ سب گیان تتو پرجاپن میں کہی گئی باتوں کا ہی وستار ہوگا. اس کے بعد دیکھو نکالو، اپن نے ویسے تو بہت باتیں اپن بتا چکے ہیں، پھر بھی اسے پڑھنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ جس میں جو باتیں اور وشیش ہیں اس ادھیکار کو آرمبھ کرنے کے پہلے بتانا ضروری، ان کو اپن پڑھیں گے. پہلے دوہا ہے، سوہا شوٹا ہے، سبھی دربے ہیں
نج آتم سرتی نج آتم ہی دیا ہے.
سمجھ میں تو آیا ہوا ہے دوہا، کیا وشیشتا ہے اس کی کوئی بتائے گا؟ سبھی درب ہیں گے، چھ ہی درب گے ہیں، کیوں گے تتو پرجاپن ہے نا، تو گے کیا کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری تھا. تو سبھی درب ہیں گے، چھ ہی درب ہیں وہ جاننے لائق ہیں، گے ہیں، اور آتما جو ہے ان چھ ہی دربوں میں آتما بھی شامل ہے ویسے، لیکن وہ گائک بھی ہے اور گے بھی ہے. اس میں دو کوالٹی ہیں، کیا؟ کہ وہ گائک بھی ہے اور گے بھی ہے. باقی کے درب گے تو ہیں لیکن وہ گائک نہیں ہیں. اور پھر دوسری لائن میں کیا کہا کہ وہ جو اپنا آتما ہے جسے ہم نے یہاں گائک کہا ہے، وہ آتما اس میں سے نج آتما لو، سبھی آتما نہیں، سب گے اور گائک یہ دو کوالٹی تو سبھی آتماؤں میں ہیں، لیکن یہ جو تیسرے نیچے بتایا جا رہا ہے سدھے اور دھے، وہ صرف اپنے آتما کی بات ہے. نج آتم سدھے اور نج آتم ہی دھے ہے. یہ دوہا پڑھتے ہیں سامان ارتھ سب کی سمجھ میں سادھارنتا آ جاتا ہے، لیکن اس میں کیا خاص بات ہے، اس میں کیا کیوں دیا ہے یہ، جس کے لیے وہ بات آپ کو دھیان میں دلائی. ایسی ہی بات کہیں اور ہے آپ نے پڑھی ہے؟ آپ کو یاد ہے بولی دلہ بھاونا میں اور کہیں؟ سمبر بھاونا میں دیکھو، آپ پڑھو ذرا سمبر بھاونا.
Oh,
उन्होंने भी इस भक्ति को, इस भाव को बताने की कोशिश की है कि मैं गे हूं, मैं श्रद्धे हूं, मैं माने अपना आत्मा यहां, मैं ध्येय हूं। बोधि दुर्लभ भावना में भी कहा होगा, पढ़ना वो बोधि दुर्लभ भावना में क्या है।
जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना।
इस तरह से बराबर इसमें है, और इसकी अगली पंक्ति भी पढ़ोगे तो वो भी उसे इसी को जुड़ी हुई है कि जब ऐसी बात है तो फिर मेरा भगवान आत्मा का अनुभव दुर्लभ कैसे हो सकता है। ये बात और है ना, अगली पंक्ति में पढ़ो।
ही बोधि है तो सुलभ ही है, बोधि की आराधना, निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है।
जब सब स्वयं में ही है, कुछ बाहर से लाना ही नहीं है, तो लोक में जो चीज दूसरों के हाथ में होती है उसे दुर्लभ माना जाता है, और जो अपने हाथ में होती है उसे सुलभ माना जाता है। क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर करता है कि वो देवे चाहे न देवे, लेकिन सब चीज जब स्वयं में ही है, साध्य भी मैं स्वयं, साधक भी मैं स्वयं, आराध्य भी मैं स्वयं, आराधक भी स्वयं, गे भी मैं स्वयं, ज्ञायक भी मैं स्वयं, जब मैं ही स्वयं हूं तो फिर उस बात को आप कठिन कैसे कह सकते हैं। कठिन तो सिर्फ व्यवहार नए से इसलिए कहा है कि अनादिकाल से आज तक नहीं मिला, तो अनादिकाल से आज तक तूने नहीं किया तो नहीं होगा, अनंत काल तक नहीं करेगा तो फिर भी नहीं होगा। माने जब भी आत्मा का अनुभव होगा वो पुरुषार्थ पूर्वक ही होगा, उसकी विधि जो आगम में है, मतलब चाहे क्रमत पर्याय में भी नक्की होगा तभी होगा, लेकिन वो सब प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि वो क्रमत पर्याय में नक्की है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ होने की जरूरत नहीं है, वो सब अपने आप हो जाएगा। मैं तो फिर हम कोशिश करें ना, कि कोशिश तुम क्या करोगे, वो कोशिश भी नक्की है। जब तुम्हें होना होगा तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी उल्टी नहीं चलेगी, तुम्हारी बुद्धि तो सहज ही उसी तरफ चलेगी, और पांचों संभाग सहज ही उसमें उपस्थित होंगे। तो इस तरह ये सभी द्रव्य हैं गे, आत्म ज्ञायक गे है, निज आत्म श्रद्धे, निज आत्म ही ध्येय है। यह तो आपको विदित ही है कि इस अधिकार का गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, यह नाम आचार्य अमरचंद देव ने दिया है, जो तत्व प्रदीपिका की टीका में उपलब्ध होता है। इसी अधिकार को आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में सम्यक दर्शन महाधिकार नाम से संबोधित करते हैं। अब इसमें यह भी एक बहुत मार्मिक बात है कि सम्यक दर्शन अधिकार वो कहते हैं, मतलब वे जैसे जाने दो, लेकिन इसमें सम्यक दर्शन जैसी की बात तो क्या है। अब हम तो पीछे ही पढ़ पढ़ के आ रहे हैं कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, दीर्घ मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, और वो जो जाना दी अरहंतम दबत्त गुण तपज्यम, तो मोक्ष का दीर्घ मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। ये सब दीर्घ मोह क्षय की सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात तो पहले ही से चले आ रही है, इसको भी क्यों विशिष्ट करके सम्यक दर्शन अधिकार कहते हैं, और वो उसको ज्ञान अधिकार कहते हैं, पहले को उसको सम्यक ज्ञानाधिकार कहते हैं, वो समझे ना उसको। तो जब वो ये कहते हैं तो इस बात पर उनका बहुत वजन है कि जो तत्व ज्ञान यहां बताया जा रहा है जह द्रव्यों के बारे में और वस्तु के बारे में गे तत्व के बारे में, उसके बिना भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुम ऐसा समझते हो कि बस मैं तो अपना त्रिकाली दुर भगवान आत्मा को जान लूंगा ना, अगर उसी के जानने से काम हो जाता है तो इन बाकी के इन बातों में मैं चक्कर में क्यों पड़ूं। जब कोई झंडारोहण करता है तो झंडा तो किसी शिखर पर ही चढ़ता है ना, है? तो वो ये समझ ले कि मैं झंडा कहीं ऐसा कहीं गाड़ के ऐसे कर दूंगा तो थोड़ी, उसके पहले शिखर बनाना पड़ेगा, शिखर के पहले मंदिर बनाना पड़ेगा, मंदिर के पहले उसकी नींव डालनी पड़ेगी। वो सारी प्रक्रिया वो झंडारोहण में अपने आप इंक्लूड है कि नहीं है, माने अकेले आत्मा के अनुभव से सम्मा दर्शन हो जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन फिर वो ही अपनी शर्त लगी हुई है कौन से, कि देशना लब्धि होनी चाहिए, फिर आगम से उसको ये सब बातें होनी चाहिए। तो उसमें देशना लब्धि में ये सब तत्व ज्ञान बताया है ना, माने वस्तु का स्वरूप क्या है, क्योंकि ये सारे जगत में इसे भगवान ने बनाया है, एक ही जवाब है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। हमारे हजार प्रश्न हैं कि भगवान ने बनाया है तो सामग्री कहां से आई थी, सामग्री भी भगवान ने बनाई है कि वो पहले से थी और सामग्री बनाई है, जैसे आटा दाल रोटी वगैरह सब थी और उसको रोटी के रूप में बना दी माता बहन ने, ऐसी भगवान ने बनाई है क्या, ऐसी बनाई तो काय की बनाई है, इसमें काय का बनाना हुआ, असली चीज तो वो है कि वो गेहूं भी वही बनाए, यानी वो सामग्री कहां से लाएगा, कि सामग्री भी उसने बनाई है तो वो लाया है कहीं से कि उसने बनाई है। तो हजारों प्रश्न है हमारे उनके प्रति, तो फिर हमको भी तो बताना पड़ेगा ना कि वस्तु स्वरूप कैसा है, कब से है, क्यों है, कैसा है, तो हमें उत्तर देना पड़ेंगे ना, तो इसके बिना हमारा जैन दर्शन का ज्ञान हमें सही हो जाएगा, और सही जैन दर्शन के ज्ञान के बिना, मतलब उत्पाद वैध हो का स्वरूप समझे बिना हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ऐसा वो शेर को हो गया था, उसने कहां से समझा था, है ना। युगल जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं इसका, कि तुझे और सब सुविधाएं मनुष्य की चाहिए, अटैच लेटरिन बाथरूम चाहिए, एक दिन सब खाने पीने की सुविधाएं चाहिए, एक दिन कोई चीज इतना देर से बन पाई अच्छी नहीं बन पाई तो उसमें 50 मील में एक निकालता है, और सम्मा दर्शन तुझे शेर वाला चाहिए, है? जैसी सुविधाओं में तू रह रहा है ऐसे जीवों को सम्मा दर्शन जैसे होता है उसकी बात क्यों नहीं करता है, है? मेरे कहने का मतलब है वो ये बहुत अच्छा जवाब है उनका, आप लोगों ने सुना था उनका उनसे मुख से कभी, कि इसको सम्यक दर्शन शेर का चाहिए, वो तो इस स्वरूप बताने के लिए कि ये चीजें इतनी अनिवार्य नहीं है क्या, लेकिन ये बाद में नहीं आएंगी समझ में, आएंगी नहीं और मोक्ष में चला जाएगा और समझ में आएंगी ही नहीं और फिर वो अपने मोक्ष में आराम से सुख से रहेगा, ऐसा नहीं है। बीच में केवल ज्ञान भी आएगा, बीच में पूर्ण दीक्षा भी आएगी, फिर सब गुणस्थानों से पार होता जो प्रक्रिया है उसी हिसाब से जाएगा ना। तो जहां तक उससे मैं क्या पुरुषार्थ किया था, वो तो अपने पेट भरने का पुरुषार्थ कर रहा था, मेरे कहने का वो तो अंतर्मुहूर्त पहले उसकी क्या पोजीशन थी। तो हम भी ऐसा सम्मर्शन होने के पहले अंतर्मुहूर्त पहले तक वैसे बने रहना चाहते हैं क्यों, कि सम्मर्शन भी नहीं हो गए तो उसके पहले भी हम शुद्ध सात्विक सज्जनोत्तम पुरुष बनना चाहते हैं ना, बनना चाहिए ना, है ऐसी बात, मतलब वो उदाहरण है, वो जिस प्रयोजन से दिया गया है वो अपना प्रयोजन सही है और वो बात भी सही है, क्योंकि वहां ऐसा ऐसी शेर की पर्याय में ऐसी बात हुई थी महावीर के साथ, वो घटना भी गलत नहीं है। हुँ? इसलिए ये तत्व ज्ञापन में जो बातें बताई जाएंगी उसको सुमना दर्शन अधिकार कहकर जयसेनाचारी आपके चित्त में जो सुमना दर्शन की महिमा है उसका लाभ उठाना चाहते हैं। क्या कि तुम इसको सीरियसली पढ़ो, क्योंकि सुमना दर्शन की प्राप्ति की कामना तुम्हारे हृदय में बहुत गहराई से है, समझ रहे ना। और वो आगम को पढ़कर तुम्हारे गुरुओं के मुख से सुनकर उनने तुम्हें सुमना दर्शन की महिमा बताई, तो जिससे तुम्हारे हृदय में पैदा हुई। तुम कोई घर से वो उद्देश्य लेके नहीं आए थे, हाँ? तुम घर से तो ऐसे आए थे कि लोग बहुत कहते हैं इसके बारे में, टोडा मनस महाराज के बारे में, अपन चलो अपन भी देखें क्या है। क्या आप भी एक ऐसे दर्शक जो परीक्षा करने के, जो जो हमने बातें सुनी हैं वे सच्ची हैं कि नहीं हैं, आपके सारा दृष्टिकोण मुझे आत्मा का कल्याण करना है, यानी उस भावना से तो आए नहीं। भगवान महावीर आदिनाथ के समूह शरण में भी वो अनंत लोग तो ऐसे आए थे जो मतलब कि जो जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना था, कुछ ऐसे भी पहुंचे थे कि देखें क्या है। एक आदमी का नाम बता सकते हो हैं? एक आदमी का नाम बता सकते हो हैं? कौन सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, गौतम स्वामी की है ना, कि जब तक वो वहां से वहां तक गए थे मानस स्तंभ तक, तब तक तो वो देखें क्या है, हैं? इनके गुरु कैसे हैं, इनके गुरु को देखने के लिए वो आए थे, मेरे कहने का मतलब। तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे आदर्श नहीं है। हमारे लिए हमारा महाभाग्य ये नहीं है कि हम भी ऐसे ही बने और आते ही फटाफट टॉप पर पहुंच जाए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट सेस। क्यों? कल तक विरोधी के नेता थे और आज आकर यहां भी सेकंड नंबर तो मिल ही जाए। क्यों ऐसे बनना है हमको कि नहीं? हमको तो जितने जल्दी जितना तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, सम्मा दर्शन के बहुत पहले प्राप्त हो जाए, संयम के बहुत पहले प्राप्त हो जाए, तो हमें क्या खराबी? हम उसके प्रति ऐसी अरुचि नहीं रखें, ये बात करी जा रही है। सम्मा दर्शन अधिकार नाम से संबोधित किया, यह भी पहले बताया जा चुका है कि आचार्य कुंद कुंद ने प्रवचन सार को अधिकारों में विभक्त नहीं किया है। अब इस बात को जानने के लिए आप ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की अंतिम गाथा और गेय तत्व प्रज्ञापन की पहली गाथा, और उन दोनों को क्रम से आपस में मिलाओ तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि उन्होंने ऐसा यहां से तोड़ेंगे हमारे इस ग्रंथ को, उन्होंने नहीं सोचा होगा। पढ़ो अंतिम गाथा और फिर पहली उसकी अंतिम इसकी पहली।
चारित्र में बसे होने महात्मन श्रमण कोई धर्म कहते शास्त्र में मत है द्रव्य एवं अर्थ है सब द्रव्य में गुण द्रव्य से परे आए परे
मतलब ऐसा कोई भेद इसमें नहीं डाला है कि जहां से, लेकिन एकदम द्रव्यगुण पर्याय की बात आ गई ना, तीनों की स्वरूप अर्थ क्या है, है? कि द्रव्यगुण पर्याय है वो अर्थ है, ये बात पहले कह आए एक गाथा में। देखो उससे जोड़ो, उस गाथा से जोड़ो इसको। कौन सी गाथा? इसमें कहा था अर्थ है द्रव्यमय, द्रव्य है गुणमय और गुण पर्यायों के रूप में परिणमित होते हैं, ऐसी गाथा थी ना, पढ़ो। ये जो इस तरह से स्वाध्याय किया जाता है, अध्ययन जिसे हम कहते हैं, दो तरह की चीजें होती हैं ना, एक अध्ययन और एक मतलब जिसे अपन बोलते हैं पढ़ना, कोरा अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं, एक स्टडी और एक रीडिंग। यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी ये सिलेबस में है और ये रैपिड रीडिंग है। किसे बोलते हैं? सिंहावलोकन, विहंगावलोकन। जानते हैं सिंहावलोकन क्या है, विहंगावलोकन क्या है? जानते तो हो गए, बोला बताओ। कौन सी क्लास में हो तुम? ये आगे वाला। हाँ बोलो, खड़े हो, बोलो। हाँ कोई क्या बात है, डरते क्यों? हाँ है? कौन सी क्लास में? इसका उत्तर नहीं आना। सेकंड ईयर में है, इसलिए क्योंकि ये बात मैं फर्स्ट, कोई होता उपाध्याय उपाध्याय वाला तो मैं माफ कर सकता था, और लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा है कि आप लोगों को क्लास वाइज बैठाया जाता है, इसलिए इस पंक्ति में वहां वो तो आ नहीं सकते, वो तो बेचारे पीछे बैठे होंगे। हैं क्यों बोलो? हाँ फिर वो सुनो उसकी। सिंहावलोकन माने शेर जब अपने उठता है और जागृत होके फिर अपने काम पे निकलता है। क्या काम है उसको? एक ही काम है, बैठो शिकार करना। तीन दिन में एक दफे खाना खाता है, वो बेला बेला का उपवास करता है। दो दिन नहीं खाता बिल्कुल भी, दो दिन कुछ भी नहीं करता। तीन दिन में एक दिन शिकार करता है और एक जीव को ही मारता है, और एक को मारकर सारा परिवार उसके अपना भोजन बनाता है, और तीन दिन भर आराम से पड़े रहते हैं उनके ऊपर वो ही जानवर जिनको उसने मार के खाया है, एक को वही जानवर उनके ऊपर से निकल जाते हैं, वहीं आसपास घास चरते रहते हैं। वो तीन दिन तक बिल्कुल बोलता नहीं किसी से, हमने आंखों से देखा है। अफ्रीका गए थे तो वहां पर ले जाते हैं जंगल में, तो अपन को तो एक बस में बैठा देते हैं, बस बिल्कुल सुरक्षित होती है कि शेर उस पर आक्रमण भी करे तो भी वो नहीं कर पाए, और बाहर वे सब खुले जंगल में रहते हैं, तो दो तीन दिन ले जाते हैं, इसलिए कि वो भी दिखाते हैं जिस दिन वो शिकार करता है उस दिन की पोजीशन, फिर वो तीन दिन कैसा पड़ा रहता है वो भी दिखाते हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल अहिंसक। उस शेर को हिंसक कैसे कहते हैं? उसे तो वो स्थान मिलना चाहिए वो बेला तेला वाला, कुछ नहीं। और ये बात इतनी पक्की और प्रसिद्ध है कि वे सब जानवर जानते हैं, सब जानवर जानते हैं ना, नहीं तो उन्हें कौन कहे, कौन समझाए कि आज वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा? वो जानते हैं अब इसने प्रतिकार कर लिया है, अब ये किसी को कुछ तीन दिन तक कुछ नहीं करेगा। वो जानते हैं, वो शेर को भी जानते हैं कौन सा शेर इस एरिए में है, और वो शेर भी जानता है सब अपना एरिया, उनके बंधे रहते हैं बिल्कुल एरिया, उसके बाहर कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, पर एरिए में किसी दूसरे को आने नहीं देते हैं। जानते हैं क्या पढ़ रहे थे अपन? सिंहावलोकन। हाँ तो ये सिंहावलोकन और विहंगावलोकन, अब ये भी एक चक्कर और है। अरे ये बातें बीच बीच में बता देते हैं ना, तो तुम्हें जिंदगी में तुम विद्वान बन रहे, काम आएंगी। जैसे कमों को आएगा तुम्हें कौन बताएगा, इसकी क्लास थोड़ी लगेगी। ये आकाश में जो बाज पक्षी होता है ना, ऐसे शिकारी पक्षी होते हैं आकाश में, क्या वो जाकर के ऐसे जो पशु पक्षी आकाश में ही घूम रहे हैं तो उनका ही शिकार करते हैं। जैसे शेर जमीन पर करता है वही काम बाज आकाश में करता है, तो वो भी जब एकदम शिकार के लिए निकलता है तो एक बार ऐसा देखता है बिल्कुल चारों तरफ देख करके, और फिर जहां जाना हो जाने का निर्णय करता है। उसे बोलते विहंगावलोकन, माने वो गहराई में नहीं जाता है लेकिन एक ऐसी निगाह डाल लेना, समझे ना, इसको बोलते सिंहावलोकन विहंगावलोकन, समझे ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये किताबों में जो भूमिका लिखी जाती है, प्रस्तावना लिखी जाती है, कहीं दो शब्द आजकल बहुत बहुत शब्द नाम चलते हैं ना, तो कई जगह विहंगावलोकन भी लिखा जाता है, सिंहावलोकन भी लिखा जाता है कि मैं इस पूरी किताब का मैंने सिंहावलोकन किया है, मैंने पूरी गहराई से तो नहीं पढ़ा है लेकिन एक बार देखा जरूर है पूरे को और फिर मैं उसके आधार पर लिख रहा हूं। जैसे ही आप जानते होंगे सर्ग परिच्छेद अधिकार अध्याय और नानू कितनी कितनी चीजें चलती हैं, लंब छत्तचूर्णामणि में लंब तत्ज्ञान साहब के दार में परिच्छेद, तत्वासूत्र में अधिकार, क्यों आपने देखे होंगे कहीं कहीं कहीं, अब इनमें क्या भेद हैं? हम तो मोटा मोटा जानते हैं कि जो लंब वगैरह हैं ये प्रथमान योग में ही ज्यादा आते हैं, परिच्छेद वगैरह और जैसे इस तरह से, अब मोटा मोटा जिन शास्त्रों में अपन ने देखा है, लेकिन उसको उन्हें कैसे अब ये नए और चल गए हैं, अनुशीलन परिशीलन क्या है? पहले होते थे भाष टीकाएं टिप्पणी वृत्ति वार्तिक भाष, वे ऐसे चलते थे सब चीजें, तो मोटी मोटी इन बातों का परिचय अपन को होना चाहिए ना। पहले ही बताया जा चुका है कि आचार्य कुंदकुंद ने प्रवचनकार को अधिकारों में विभक्त नहीं किया है, वे तो एक साथ एक क्रम में ही संपूर्ण प्रवचनकार लिखते गए हैं, उक्त वर्गीकरण टीकाकार आचार्यों द्वारा ही किए गए हैं। आत्मकल्याण के लिए जगत में जो भी जानने योग्य पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों का वर्णन इसी गेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में होगा। ये जो प्रवचन सार समय सार इनकी जो विषय वस्तु है कुंद कुंद ने लिखे थे और 1000 वर्ष तक इन पर कुछ नहीं लिखा गया हो ये संभव नहीं है। वो 1000 वर्ष वाली पीढ़ी इतनी अभागी नहीं हो सकती है। क्या कह रहा हूं कि उसे कुंद कुंद सीधे ही समझ में आ गए होंगे, उसे किसी टीका की जरूरत नहीं पड़ी होगी, वो सबकी समझ में आ गए होंगे तो उन्हें किसी को उसकी टीका लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। निश्चित रूप से लिखा गया होगा बहुत कुछ, लेकिन हमें क्या उपलब्ध है, बहुत कम चीजें उपलब्ध हैं। आज से 50-60 वर्ष पहले, वो तो 100 वर्ष पहले से लगा लो, गोपालदास जी बरैया के समय से, बरनी जी के समय से, उस वक्त सबका ध्यान न्याय शास्त्र पर और कर्णन योग पर था, तो उन्होंने समंत भद्र अकलंक विद्यानंद स्वामी प्रभाचंद्र अनंतवीर इनको ही ध्यान इन पर ही ध्यान दिया। ये भी बहुत लिमिटेड हैं, उसमें भी बहुत लोग रहे होंगे और इन्हीं आचार्यों की बहुत चर्चा होती थी। हाँ, हमारे यहां तो पढ़ाया जाता था, जब हम शास्त्री में पढ़ते थे ना सर, तो तत्वाशुद्ध भी पढ़ाया जाता था, फिर सर्वार सिद्धि भी पढ़ाई जाती थी, फिर राजवार्तिक भी पढ़ाया जाता था। तीन चीजें पढ़ाई जाती थी, जब तक 5-6 साल में शास्त्री होते थे उतने में 3 चीजें पढ़ा देते थे, तो तत्वाशूद्र की धारा चलती थी। अब वो न्याय में न्यायदीप का परीक्षा मुख, अभी क्यों मुझे ही बोलने दो क्यों बस बात सुनो, ये रत्न माला आप तो परीक्षा और फिर अश्वेश्वरी, अरे प्रमेय कमल मार्दन, देखो मैं थोड़ा बताता हूं उस वक्त का, तुम समझ लो जानकारी के लिए। न्याय प्रथमा में 2 ही किताबें थी, सिर्फ न्यायदीप का परीक्षा मुख, न्याय मध्यमा में सिर्फ 2 ही किताबें थी, आप्त परीक्षा और प्रमेय रत्नमाला, और न्याय तीर्थ में भी सिर्फ 2 ही किताबें थी, प्रमेय कमल मार्दन और अर्थशास्त्री। इन 6 किताबों में एक आदमी न्याय से तीर्थ हो जाता था, सुन पूरा न्याय शास्त्र आ गया इन तीनों में जो हमने सब ये पढ़े हैं, आप समझे ना। उस समय न्याय प्रथमा, काव्य प्रथमा, न्याय प्रथमा से जाते थे तो न्याय तीर्थ की डिग्री मिलती थी, और काव्य से जाते थे तो काव्य तीर्थ की डिग्री मिलती थी। तो ऐसे बहुत तीर्थ होते थे, एक दो तीर्थ नहीं होते थे, ऐसे कई। अब फिर न्याय में जैन न्याय, फिर अजैन न्याय, फिर वेदांत, फिर ये सब अलग अलग थे, अलग अलग तीर्थ थे। माने हम उस, हमारे पास जो सर्टिफिकेट मिला था ना, तो उसमें मालूम क्या लिखा था, हमने जैन दर्शन के संबंध में शास्त्री की परीक्षा पास की, इसलिए आपको न्याय तीर्थ की डिग्री से विभूषित किया जाता है, ऐसा लिखा, संस्कृत में ऐसा लिखा रहता था। तो जब हमने कहा कि हम न्याय तीर्थ हैं, और हमको जब गए तो वे कहे तुम शास्त्री चाहिए, हमको तो न्याय तीर्थ नहीं चाहिए, समझे ना। तो हमने लिखा सर्टिफिकेट, दिखाया, देखो कि हमने शास्त्री की परीक्षा पास की, इसलिए हमको न्याय तीर्थ की जो डिग्री है, समझ रहे हैं ना आपकी में। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वो छह किताबें पढ़ के न्याय तीर्थ होते थे, और ये जो काव्य में प्रथमा मध्यमा और काव्य तीर्थ, इनमें कम से कम 10 किताबें प्रथमा में होंगी, 25 किताबें मध्यमा में होंगी, और इससे भी ज्यादा तीर्थ में होंगी। मैंने उधर किताबों का ढेर था, उनका साहित्य दर्पण किनका है नहीं, आप लोग जानते ही नहीं होंगे। ये साहित्य दर्पण मालूम क्या चीज है, कि ये छंद अलंकार ये सब चीजें होती हैं ना कविता लिखने की, उन साहित्य का बहुत विस्तार से वर्णन है, जिसमें वो उसका बहुत बड़ा 1000 पेज का ग्रंथ है। भरत मुनि से उनकी भी एक परंपरा है, वो भरत मुनि से शुरू होती है, फिर कुंतल और फलाना फलाना ऐसे करके कई संप्रदाय हैं, उसमें भी कई संप्रदाय हैं, और होते होते अंत में साहित्य दर्पण जो है, किसका मैं अभी नाम भूल रहा हूं, हाँ विश्वनाथ का। तो विश्वनाथ का साहित्य दर्पण अंतिम ग्रंथ है जो सबको समेट करके और उसने ये बनाया है। तो वो हमारी क्लास में 13 विद्यार्थी थे, समझे, तो हम दोनों भाइयों ने न्याय प्रथमा ली थी और बाकी 11 ने काव्य प्रथमा ली थी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि वे 5-7 ग्रंथों से 10-20 ग्रंथों से ये 2 किताबें ज्यादा कठिन थी, जो इन्हें लोग नहीं लेना चाहते थे, और वो ऐसे ही कहते थे कि उसमें तो मजा आएगा, साहित्य में आएगा जब वर्णन के शकुंतला पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, साहित्य में तो शकुंतला की कमर नापने को मिलेगी। वो सब लगता था क्योंकि उसमें तो काव्य का रस था ना, ये सब चीजें थी, और इसमें तो कहते बहुत रूखा। दूसरे के मतों का खंडन मंडन यही ज्यादा होता था ना, है? लेकिन इसकी जितनी कीमत थी उतनी उसकी नहीं थी। अभी एक थोड़ी और समझ लो कि ये परीक्षाएं होती थी कलकत्ता से, इसका नाम था बोर्ड का बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद। क्या नाम था जिसने हमें डिग्री दी थी, बंगीय माने बंगाल की संस्कृत शिक्षा की परिषद थी, उसका वो बोर्ड था। और वो जो परीक्षाएं साहित्याचार न्यायाचार्य ये जो परीक्षाएं थीं, ये व्याकरणाचार्य ये सब थी बनारस की। तो बनारस में भी उस समय में यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं थी, क्वींस कॉलेज के नाम से एक कॉलेज था जो संस्कृत के विद्वान तैयार करता था। अब क्वींस कॉलेज ऐसा नाम का है, संस्कृत का किसी आचार्य का नाम नहीं, किसी नहीं, क्वींस माने महारानी कॉलेज, यहां भी महारानी कॉलेज महाराजा कॉलेज है। तो हमने क्वींस कॉलेज की प्रथमा दी थी, प्रथमा मध्यमा, फिर उसमें आचार्य होता था, प्रथमा माने 1 साल प्रथमा, 4 साल मध्यमा, और फिर 2 साल का आचार्य, जैसे साहित्याचार्य व्याकरणाचार्य न्यायाचार्य ऐसे ऐसे बनते थे। ऐसी पद्धति उस वक्त चलती थी। यूनिवर्सिटियां तो बस 1-2-3 यूनिवर्सिटियां थी, एक इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी, एक बनारस की सबसे पहले बनी थी, फिर दूसरी बनी अलीगढ़ में, फिर तीसरी इलाहाबाद में बनी, दो-चार थी। परीक्षा बोर्ड भी एक ही था, अजमेर परीक्षा बोर्ड, जहां से मध्य प्रदेश का भी समझे ना, वहां इतनी दूर दूर से परीक्षाएं अजमेर बोर्ड से ही होती थी, फिर बोर्ड मोड भी नहीं थी, सब अलग अलग नहीं थी, ये सब बाद में बने हैं सब। ये थोड़ी सी जानकारी वैसी है। अब अपन कह रहे हैं पहले सभी द्रव्यों की सामान्य चर्चा करेंगे, ये गे तत्व प्रज्ञापन में हम क्या करेंगे ये बता रहे हैं। उसके बाद सत द्रव्यों में अनेक युगलों में विभक्त कर प्रस्तुत करेंगे तथा प्रत्येक द्रव्य की अलग अलग विशेष चर्चा करेंगे। तत्पश्चात ज्ञान और ज्ञेयों की भिन्नता का स्वरूप स्पष्ट करेंगे। ये तीन पंक्तियों में पूरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की विषय वस्तु आ गई। ये तो सामान्य की तो बात कई दफे करते रहे अपन, इसमें उत्पाद वै ध्रुव वगैरह ये सब चीजें आएंगी। फिर विशेष में जो छह द्रव्य है ना, तो ऐसे जोड़े बनाए जीव अजीव, अपन एक ही जोड़ा बनाते हैं जीव अजीव, फिर वहां हरेक को ऐसे बनाएंगे। अब जैसे एक काल को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, काल का बनाएंगे, जैसे जीव अजीव का बनाया तो काल का बनाएंगे, अस्थि का है और नास्ति का है। जैसे काल देव को एक तरफ खड़ा कर दिया ना, और बाकी पांच को एक तरफ, माने बाकी पांच को एक तरफ करो और एक को एक तरफ करो, ऐसे उनने हर द्रव्य के साथ किया है? अब पुद्गल का बनाओ, मामूर्ति को मामूर्ति, रूपी और अरूपी है ना, ऐसे जोड़े बना बना करके वो बताएंगे। तो कहते फिर अलग हरेक की अलग अलग स्वरूप भी बताएंगे, इस तरह से विशेष अधिकार में करेंगे। फिर ज्ञान गे विभाग अधिकार। अब वास्तव में मेरा कहना ऐसा है कि इनने गे तत्व विज्ञापन में से क्यों रखा, ये तो ज्ञान ज्ञान तत्व विज्ञापन और गे तत्व विज्ञापन इन दोनों के संबंध में है ना, ज्ञान गे विभागाधिकार, इसका तीसरा अध्याय बनाना चाहिए, महाधिकार बनाना चाहिए अलग, ज्ञान गे विभागाधिकार, समझ गए ना, उसका नाम ही ऐसा है कि हमने पहले ज्ञान तत्व समझाया फिर गे तत्व समझाया, अब दोनों में क्या फर्क है, आपस में अंतर क्या है, भेद विज्ञान का अधिकार है वो, हमें भेद विज्ञान कराना है ना, भेद विज्ञान तो मूल है जैन धर्म का। तो तीसरे का नाम क्या है, ज्ञान गे विभाग अधिकार। इसमें सब वो ये शरीर आत्मा नहीं है ये ऐसे सब कराएंगे, ये सब गे है, ये ज्ञान है, ये गे है ज्ञान है, ऐसी स्थूल चीजें आएंगी कई चीजें, क्या आपको लगेगा ये हम पर पालवत पर हमारा एक में पड़ जाए थे दो में पड़ जाए थे, ऐसी चीजें भी आएंगी, उनके सामने थोड़ी बालभूत पाठमाला आई थी, तो उनके पास आचार्य के पास आते थे तो वे बालभूत पाठमाला पढ़े हुए लोग आते थे, वो तो अपने सामान्य तरीके से जो भी उनके पास आते थे उन्हें पढ़ाते थे, उनके हिसाब से उनने वो बातें लिखी। फिर कहेंगे कि अभी ये आदमी दो अधिकार हो गए ना, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक ज्ञान अधिकार, अथवा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, तो अब ये कहते हैं कि एक चारित्राधिकार अवश्य होना चाहिए। अब वो जीवन में धारण करने की चौथे गुण स्थान तक पहुंचने के का रास्ता तो ये दो अधिकार हैं, और चौथे से आगे बढ़ने का रास्ता उसको कुंद ने अमरचंद ने रखा चरणान योग सूचक चूलिका, उसे अधिकार ही नहीं माना उनने, महाधिकार तो दूर रहा, ये ज्ञानाधिकार है, ये ऐसे अधिकार है ना वो महाधिकार चूल का माना, और इनने से चारित्राधिकार का किन्ने, जैसे इनने एक सम्यक ज्ञानाधिकार पहला, सम्यक दर्शनाधिकार दूसरा, और तीसरा उसमें चारित्राधिकार। और बिल्कुल मुनि दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले माता पिता से आज्ञा लेते हैं, तो आज्ञा किस भाषा में लेते हैं वो सब बातें उनने वहां से बताई, और उसमें मुनियों का स्वरूप भी बहुत अच्छा बताया है। मैं सिर्फ एक दृष्टि से उसके बारे में कमेंट्स करूंगा तुम लोगों के सामने, उसे मोक्षुओं को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोक्षुओं ने जितनी कठोर दृष्टि बना रखी है, क्या समझे परमात्मा, उसमें थोड़ी शिथिलता आएगी। तुम्हारा सवाल रहता ना हमेशा, तो तुम्हें चरणान योग सूचक चूल का पढ़ना चाहिए, तभी तक इंतजार करोगे जब मेरा नंबर आएगा पढ़ाने का, तो पहले भी पढ़ोगे सूचना। मुमुक्षु है, मेरी बात सुनते हैं तो उन्हीं से मैं कह रहा हूं, मुझे वो पढ़ना चाहिए। उसमें वो सब वर्णन है कि जब एक मुनि बीमार पड़ जाए, ऐसी हालत खराब हो जाए तो क्या हो जाए, क्योंकि उसको आहार जन करने जाएगा, दवाई ले कैसे ले सकता है, क्या कर सकता है। तो निर्यापकाचार्य उसकी परिस्थिति को समझे और श्रावकों को ट्रेनिंग दे कि आहार में ऐसी चीज इनको आहार में देना, ठंडी चीज मत देना जो, क्योंकि इनको बहुत कफ हो रहा है, ये हो रहा, आप समझेंगे ना। और उसमें इस शुद्ध सात्विक दवाई बताएंगे कि ये दवाई देना, आहार में देना। तो आपको जो लगेगा कि आपने कभी बिल्कुल ऊपर ऊपर का समझ लिया ना, एकदम बिल्कुल बढ़िया मान लिया गया, एकदम तो कुछ नहीं, महाराज तो अंदर है। लेकिन वे भी तो हमारे जैसा उनका शरीर है ना, उनकी भी तो बहुत सारी तकलीफें हैं ना, उन सब पर विचार करो ना। आप लिखो ना एक किताब, आप माने आप सोचो। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी मुनि धर्म पर विचार करो तो एक दृष्टि सबसे पहले रखो कि मुझे मुनि बनना है और उसके लिए मुझे मुनि धर्म का स्वरूप समझना है। कोई दूसरे मुनि हैं, उन्हें उस मुनि धर्म की कसौटी पर कसने के लिए कभी मुनि धर्म का स्वरूप समझने की कोशिश नहीं करना। अब उसमें आ जाएगा, क्योंकि जब हम समझ जाएंगे, स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाएगा, तो उसके अनुकूल प्रवृत्ति दिखेगी वो अलग दिख जाएंगे, जिनकी प्रतिकूल प्रवृत्ति दिखेगी वो अलग दिख जाएंगे। तो ये वो हमारा एक्स्ट्रा लाभ है जो हमें प्राप्त होगा ही, लेकिन दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। मैंने संलेख में आपने सोचा बेचारा लिखा, तो पहले इस दृष्टि से अपन अपने हिसाब से लिखो। ऐसा नहीं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो विद्यानंद जी ने वो ले ली थी तो उनको 80 वर्ष के हो गए, वे 12 वर्ष पूरे हो गए तो उन्हें मर जाना चाहिए। ऐसी कहने वाले सैकड़ों हैं। मैं नहीं मानता हूं कि उनने कोई गलती की है, समझ लेना। ऐसा नहीं कि मैं उनका कोई पक्ष का हूं, लेकिन मैंने जनवाणी पढ़ी है ना, अभी पढ़ी। उनने भी मुझे अपने 10-20 लेख दिए, जिन लेखों में उन्होंने खूब जनवाणी पढ़ पढ़ करके और लिखी बातें, तो उनने भी स्टडी की है, उसके बाद की होगी, पहले की होगी, कभी भी की होगी नहीं। 10-15 लेख कैसे लिख दिए, मेरे पास रखा है वो पूरा पुथन। हां दीदी, आपने देखा था वो रखा है। हालांकि फिर मैंने उसे अच्छी तरह से पढ़ा, ऐसी कोई चीज मुझे कोटेशन में देने लायक नहीं मिली कि जो मैं उसे देता, लेकिन उनने स्टडी की है, ये बात तो पक्की है ना। मेरे में पहले से भी मौजूद थी चीजें, तो उनने स्टडी की है, गंभीरता से उन्होंने जो भी निर्णय लिया है जीवन के लोभ में नहीं लिया है, स्वरूप ही ऐसा है, हम अपने शुद्ध सा। लेकिन अभी ये संलेखना लेने वाले जितने लोग हैं, मैं मुनिराजों की बात नहीं करता हूं, फिर आप उधर मत ले जाना, जो सामान्य ग्रस्त हैं और जो संलेखना लेना चाहते हैं, उनने पहले क्या पढ़ा, उनने संलेखना के बारे में क्या जाना, ये जानने की जरूरत नहीं है। आप कोई धंधा करते हैं, मुझे पान की दुकान खोलनी है, तो उसके बारे में, पान के बारे में पहले थोड़ी बहुत स्टडी करते हैं कि नहीं करते हैं, कि क्या क्या लगता है पान में, कि चूना क्या होता है, कत्था क्या होता है, कि क्या करना है, पान की दुकान। अरे वाह, तू चूना कत्था नहीं जानता है, पान की दुकान करेगा, समझ गए ना आपकी। ऐसा मुनि धर्म ऐसा है, श्रावक धर्म संयम ऐसा है कि उसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे और हम नहीं ले लेंगे संयम। उपवास के बारे में हम कुछ नहीं जानेंगे और उपवास कर लेंगे, क्या जानते हैं ना, बस रोटी छोड़ी जाती है, खाना छोड़ दिया, वो सब बात पर इतना ही जानना पर्याप्त है। क्यों, सैकड़ों आदमी ऐसे नहीं हैं, खासकर महिलाओं में, कि वे इतना ही जानना पर्याप्त समझती हैं कि क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, हैं? इसे ज्यादा क्या समझती है, समझने की कोशिश ही नहीं की। हर बात में हमें सीरियस तो होना चाहिए ना, कोई चीज हम धारण कर रहे हैं तो किसी सीरियस होना चाहिए। पहले सभी द्रव्यों की सामान्य चर्चा करेंगे, उसके बाद सर्वद्रव्यों के अनेक युगलों को विभक्त कर प्रस्तुत करेंगे तथा प्रत्येक द्रव्य की अलग अलग विशेष चर्चा करेंगे। तत्पश्चात ज्ञान और ज्ञेयों की भिन्नता का स्वरूप स्पष्ट करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमने तो ये स्वाध्याय किया नहीं था ना इसका प्रोजनसार का, तो हमने शास्त्र भी गद्दी कर रख लिया। प्रोजन कौन करता है कि मैं ही करता हूं? अरे उसे ये अधिकार है, तूने आज तक उसे देखा नहीं है और तूने गद्दी पर रख लिया। कम से कम एक बार आद्योपान गहराई से देखने के बाद ही गद्दी पर रखना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत है मालूम इसमें? कि जब हमें ये गाथा आएगी और हम जो जो बात कह चुके होंगे अगली गाथा में उसका विरुद्ध लिखाने के लिए क्या होगा उसी में। तो हम ऐसे हैं, हम ऐसे लोगों से पढ़ते हैं कि मेरा भी साथ में अध्ययन हो जाएगा। अरे तुम अध्ययन अपने लिए पृथक करो और एक दफे आदि से लेके अंत तक गाथाओं का पूरा अपना एकांत में अध्ययन नहीं कर लो तब तक प्रवक्ताओं को उसको प्रवचन में रखने का अधिकार नहीं है। ये निरंतर जो प्रवचन करते हैं जहां उनकी बात कर रहा हूं, तुमने एक दिन के लिए गए एक गाथा पढ़ ली देख ली और एक दिन वहां प्रवचन कर दिया, वो एक बात अलग है। लेकिन अपन जहां रहते हो ना गांव में रहोगे जिस गांव में, उस गांव में जिस ग्रंथ पर भी प्रवचन करो, देखो तुम शास्त्री हो फर्स्ट क्लास हो जाओ टॉपर्स हो जाओ, लेकिन यदि तुम्हारे उस गांव के लोग कहें कि हमें तो आप साहब जय धवल पढ़ा दीजिए, हमें तो आप साहब फलानी चीज रख दीजिए साथ सभा में अपन वो पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल हाथ जोड़ के कह दो कि मैंने उसे पढ़ा नहीं है, मेरी दृष्टि में उपयोगिता उसके पहले इसकी है। आप अपनी सलाह बताइए, सबसे ज्यादा विशेषज्ञ आप ही हैं जो डिसीजन करेंगे, उन अनाड़ियों के आधार पर नहीं। उनके मन में निकल पाया कि आज के धवल की चर्चा बहुत चलती है, अपन भी धवल पढ़ लेते हैं कि गोमरसार पढ़ा है, तो गोमरसार पढ़े बिना धवल पढ़ लोगे क्यों? ऐसी प्रवृत्ति है। माने फिर वो ग्रंथ जो आपने आद्योपांत पढ़ा है वो रखना चाहिए, यदि और ग्रंथ रखने का है तो पहले आद्योपांत उसे पढ़ना चाहिए और रोजाना उसे घर से पढ़ के आना चाहिए। मैं तो ये पहले दिन से और आज तक ये निभाता हूं। मैं एक घंटे का प्रवचन करता हूं तो ज्यादा एक घंटा नहीं मानता हूं, उसे दो घंटे मानता हूं कि एक घंटे मैं आपकी स्टडी में लगाऊंगा और एक घंटा मैं प्रवचन करूंगा, तो दो घंटे की मेरी ड्यूटी पक्की हो गई। समझे, सब शास्त्रियों से कह रहा हूं मैं, ख्याल में है ना, बिल्कुल बहुत जिम्मेवारी से। हम श्रापकाचार की क्लास लेने बैठे हैं तो श्रापकाचार पूरा हमारे ख्याल में तो होना चाहिए, फिर वो बात उसके जो हमने अभी पहले कह दी उसके विरुद्ध निकलेगी तो। लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे श्रोता ही ऐसे होते हैं, उन्हें कल हमने क्या कहा था ये ही याद नहीं रहता है, तो फिर भी हमें क्या बताएंगे तो उन्हें कल तो ये कहा था, आज जो जिस दिन आएगा उस दिन वो हम कह देंगे। सीरियस नहीं है, एक काम बहुत सीरियस करने का है। इस प्रकार गेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार तीन अधिकारों में विभक्त है, जो इस प्रकार हैं: द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार और ज्ञान गेय विभागाधिकार। द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार प्रवचन सार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, क्योंकि इसमें प्रतिपादित वस्तु स्वरूप जब तक हमारे ख्याल में नहीं आएगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है। अब कहें तो आप कोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे तो हम तो उधर के कांजी स्वामी के शिष्य हैं कि जिसमें कोई ज्यादा झंझट का काम नहीं है, बस फटाफट एक दिन आए एक व्याख्यान सुना और रात में एक कमरे में बैठे और सुबह सम्मान दर्शन लेके बैठे। हम तो ऐसे गुरु के शिष्य हैं, गुरु का सर्टिफिकेट मिल गया सारे देश में। क्यों हंतीलाल जी ठीक है? अरे तुम उन गुरुदेव के शिष्य हो जिनने सारी जिंदगी अपनी 20 वर्ष की उम्र से लेकर 90 वर्ष की उम्र तक कम से कम रोजीना 4-6 घंटे स्वाध्याय किया प्रवचन के अलावा, दो टाइम प्रवचन किया और एक टाइम चर्चा की, उसके अलावा 4-6 घंटे स्वाध्याय किया। तुम्हें बदनाम करते हो हम उन गुरु के शिष्य, उन अध्ययन का विरोध करते हो उनके नाम पर। क्या ये जो आलसी प्रवृत्ति के जीव है ना, एक पेज पढ़ने में जिन्हें पसीना छूटता है, कहने ना ये उनके चोचले हैं जो निकाले हैं उनने। और हर महापुरुष का कोई एक आध वाक्य कहीं से पकड़ लेते हैं, भर उसके ऊपर चलाते हैं बात। उसी महापुरुष जिसका महापुरुष की वो बात करते हैं, उसी महापुरुष की आगे पीछे के और कोटेशन तो देखो है? गुरुदेव श्री बेचार कला तो रोजाना स्वाध्याय जो ये एक आदमी उनके ख्याल में था कि जो 4 घंटे रोजाना स्वाध्याय करता है। एक नाम उनने सुन रखा था जिनका नाम था डॉक्टर चंदू भाई, राजकोट में थे तो उनके बारे में उनके कान में पहुंच गई होगी कि वे रोजीना 4 घंटा घर पर बैठ के स्वाध्याय करते। डॉक्टर थे, ट्राई प्रैक्टिस करते थे, अपने दवाखाने में बैठे रहते थे, किताब शास्त्र रखते थे, पढ़ते रहते थे। आया ग्राहक कोई तो उसे देख लिया, दवाई दे दी, ऐसे चलते थे ना कि दवाखाने तो बस कदम उन्हें अपने फिर पढ़ते रहे, तो उनका नाम लेते थे बेजा कला द्वाध्याय जो ये चंदू भाई डॉक्टर। क्यों अब बे गुरुदेव ये कहते थे, अब बे गुरुदेव कहते ये कहते ऐसा हो गया। अब फिर हमें कौन, फिर वो शेर वाला समय दर्शन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें हुआ था कि नहीं हुआ था, कि शेर को हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन मैं कहता हूं वो राजमार्ग नहीं है। ये कह रहा हूं आप समझ गए ना, उल्टा मत समझना मेरा। उन महापुरुषों पर मैं कोई शंका नहीं कर रहा हूं, इसी प्रकार द्रव्य विशेषाधिकार में प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप स्पष्ट करने के साथ साथ 6 द्रव्यों के अनेक युगलों में विभक्त कर भेद विज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। सबको ये उससे कैसे जुदा है, ये उससे कैसे जुदा है, उन्हें भिन्नता समझाई ना, तो भेद विज्ञान की तैयारी है। ज्ञान के विभागाधिकार एक प्रकार से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार दोनों को अपने में समेटे है, दोनों का उपसंहार है, दोनों का निष्कर्ष है। उसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि ज्ञान तत्व जुदा है और गे तत्व जुदा है, यद्यपि अपना ज्ञान भी है और गे भी, आत्मा ज्ञान भी है और गे भी है, तथापि अपने लिए ज्ञान तत्व मात्र अपना आत्मा ही है। शेष सारा जगत जिसमें अन्य सभी आत्मा भी शामिल हैं, गे तत्व ही है, मात्र गे तत्व ही है। अब तुम्हारा आत्मा तुम्हारे लिए तो ज्ञान तत्व गे तत्व दोनों है, और हमारे लिए सिर्फ गे तत्व है, हम भी तुम्हारे लिए सिर्फ गे तत्व हैं, ज्ञान तत्व नहीं है। इस दृष्टि से विचार करें तो यह ज्ञान गे विभागाधिकार एक स्वतंत्र महाधिकार होना चाहिए। देखो वही बात मैंने आपसे कही थी ना, वो मैंने इसमें लिखी भी है, जो स्टडी करके मैंने कहा अत्यंत विनयपूर्वक सब बात लिखी है, तो आप लोग विचार करो, नहीं देते तो रिजेक्ट करना, मेरी बात समझ के करना विचार। ये कुंद कुंद की मत मानना, इसे अमरचंद की मत मानना, जयसेन की मत मानना, तथापि यहां इसे गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत एक अधिकार के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान तत्व और गे तत्व को जानने के साथ साथ ज्ञान तत्व गे तत्व में भेद जानना भी अनिवार्य है। हम दोनों अधिकार जान लिए, ज्ञान को भी जान लिया, गे को भी जान लिया, अब काम हो जाएगा कि नहीं, इनके भेद भी जानना चाहिए, इन दोनों में परस्पर क्या भेद है। इसलिए ज्ञान गे विभागाधिकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार ये तीनों अधिकार ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। ये अपना जो ज्ञान सामान्य अधिकार जो गया ना, फिर बाद में प्रवचन साल में ज्यादा कठिन बात नहीं है, सरल, बहुत सरल है वो, बहुत तेजी से निकल जाएंगे अपन, जल्दी पार करेंगे, इसमें लगेगा समय। ये जो ज्ञान के विभाग अपन जो पढ़ने वाले हैं ना, द्रव्य सामान्य अधिकार, ये अमेरिका में 10 वर्ष से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, वहां से शुरू किया था पद्य मूणा ही परसों यहां, और मैं बहुत आगे तक पहुंच गया हूं। यही अधिकार चल रहा है। मैं हर साल उनसे कहता हूं, भैया दूसरा विषय कि नहीं दादा वही सुनना है आपसे, तो मुझे लगता है कि इसे बहुत कठिन पड़ेगा, बहुत कठिन पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी स्टडी करते हैं वे लोग साल भर तक। जब मैं वहां पढ़ाता हूं तो तुम जैसे कम नहीं दिखाई देते, वे कमजोर नहीं पड़ते हैं, हैं? लेकिन मैं वो अभी कहां तक पहुंच गया, जब मैं वहां जाऊंगा तभी मुझे पता चलेगा, लेकिन काफी आगे पहुंच गया हूं। मतलब वो निकल गया है कौन, इसमें वो आया था ना सामान्य महासत्ता, अवान्तर सत्ता, और ये दूसरा विषय वो है प्रदेश भेद, और वो क्या बोलते उसे, अन्यत्र, अनन्यत्र, पृथकत्व, इनका अंतर, ये सब करके निकल गए। तो मेरे लिए तो पढ़ाया हुआ जो विषय है अभी है, लेकिन मेरे को भी कठिन लगता है, ऐसा नहीं, मैं बराबर रोजीना स्टडी करता हूं, करके फिर तुम्हारे सामने रखूंगा। क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान तत्व गे तत्व को जानने के साथ साथ ज्ञान तत्व गे तत्व में भेद जानना भी अनिवार्य है। समय हो गया भाई तुम्हारा, इसलिए ज्ञान गे विभागाधिकार भी अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इस प्रकार ये तीनों अधिकार ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। तत्व प्रदीप का टीका में गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के आरंभ में मंगलाचरण संबंधी कोई गाथा नहीं है, किंतु आचार्य जयसेन के तात्पर्य वृत्ति टीका में मंगलाचरण संबंधी गाथा प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि आचार्य कुंदकुंद ने तो यहां मंगलाचरण की गाथा लिखने की आवश्यकता ही नहीं समझी, किंतु उनके परवर्ती किसी ने कालांतर में ऐसा लगा कि अधिकार का आरंभ है तो मंगलाचरण होना ही चाहिए, और उसने इस गाथा को इसमें शामिल कर दिया। गाथा इस प्रकार है, कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया।
जान।